मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 12 मार्च 2018 है और आज के इस afias.com के डेली ऑडियो लेक्चर में आप सभी का मैं हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत हार्दिक रूप से अभिनंदन भी करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि यहां अब 15 दिन की क्लासेज शुरू हो चुकी हैं और अब मेरा ज्यादा से ज्यादा वक्त, ज्यादा से ज्यादा क्या यूं कहूं कि मेरा पूरा वक्त देश भर से आए हुए इन विद्यार्थियों के साथ ही गुजरता है। क्लासेज चलती हैं, मिलना जुलना होता है, आपस में बातचीत होती है और सच पूछिए तो एक बड़ा खूबसूरत सा ज्ञान का मेला लगा रहता है। और ये 15 दिन मेरे जिंदगी के जो एक साल का जो वक्त होता है उसके सबसे खूबसूरत दिन होते हैं और फिर से इसी तरह के 15 दिन अक्टूबर और नवंबर में आने वाले हैं। तो दोस्तों, चूंकि उस समय, इस समय मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं रहता है कि मैं डेली ऑडियो लेक्चर को उस पैटर्न पर रिकॉर्ड कर सकूं जिस पैटर्न पर आप सब अभी तक सुनते आए हैं, यानी कि उसके तहत मैं अखबारों के खबरों की चर्चा करूं, रेडियो और दूरदर्शन के न्यूज को लेकर के उनका विश्लेषण करूं, मित्रों वह मेरे लिए कतई संभव नहीं हो पाता। और सच पूछे तो मैंने इसके लिए थोड़ी सी कोशिश भी की, मुझे लगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि अब बहुत जल्दी उठा जाए और तैयारी की जाए, लेकिन उस समय तक अखबार नहीं आते हैं और फिर जो 15 दिन की जो हम सब की जो मेहनत होती है उसमें जरा भी इस बात की गुंजाइश नहीं रह जाती कि जरा क्लासेस से हट करके हम लोग कुछ कर सकें। और फिर एक दो दिन की बात हो मित्रों तो उसे चलाया भी जा सकता है, किया भी जा सकता है, लेकिन बात जहां 15 दिन की हो तो संभव नहीं हो पाता। और डेफिनेटली अगर ऐसा किया भी जाए तो मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि गुणवत्ता पर फर्क पड़ जाएगा। दूसरी बात यह भी है मित्रों कि आखिर में उसकी जरूरत भी क्या है। जरूरत है, अगर बहुत लंबे वक्त तक चलना है, करना है, तब तो उसकी जरूरत है, फिर तो सोचना पड़ेगा। लेकिन जहां तक 15 दिन की बात है तो मुझे ऐसा भी लगता है कि इन 15 दिनों का इस्तेमाल कुछ और दूसरे भी खूबसूरत तरीके से किया जा सकता है। और वो जो खूबसूरत तरीका होगा वो किसी भी मायने में जिस तरीके से अभी तक किया जाता रहा है उससे कमतर नहीं होगा। यह तरीका भी उतना ही उपयोगी होगा जितना उपयोगी पहले वाला तरीका रहा है। बस फर्क केवल इतना है कि अब जो टॉपिक होंगे वे टॉपिक करंट से नहीं होंगे, लेकिन वो इस तरह से जरूर होंगे कि आपकी परीक्षा के लिए उतने ही महत्वपूर्ण होंगे जितने की महत्वपूर्ण करंट के टॉपिक हुआ करते थे। एक बात और भी है फ्रेंड्स, जैसा कि आप सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन की तैयारी के बारे में जानते हैं कि अगर आप करंट में कुछ भी पढ़ रहे हैं और उसे समझना चाह रहे हैं, जबकि सिविल सर्विस में समझना अनिवार्यता है, तो बहुत जरूरी है कि आप उसकी उनकी बेसिक चीजों को जानें। जब तक आप बेसिक्स को नहीं समझेंगे तब तक जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं स्पेशली मेंस में, हालांकि प्री में भी कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ कॉमन सेंस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन चलिए अगर हम उसे अभी छोड़ दें तो जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं उनके उत्तर तब तक नहीं दिए जा सकते जब तक कि बेसिक्स की आपको समझ न हो। तो मित्रों, इस पर खूब विचार करने के बाद फिर मैंने यही फैसला किया है और इससे पहले भी यही होता रहा है कि इन 15 दिनों का इस्तेमाल मैं आपको कुछ टॉपिक्स के बेसिक्स बताने में करूंगा। और मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि जब पिछली बार मैंने ऐसा किया था तो आप लोगों का बहुत उसे जबरदस्त रूप से प्यार मिला, स्नेह मिला, सम्मान मिला, आप लोगों को बहुत मजा आया और बहुत से मेल तो ऐसे आए कि उसमें यह साफ तौर पर रिक्वेस्ट की गई कि सर इसी पैटर्न को क्यों ना अपना लिया जाए, यही हमारे लिए सबसे ज्यादा मुफीद है, सबसे ज्यादा फायदेमंद है। मित्रों, आप सबने उस समय जो कहा था मैं उसे गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो करंट अफेयर्स है उसे तो हम किसी भी कीमत पर किनारे कर ही नहीं सकते, उसकी तो उपेक्षा की ही नहीं जा सकती। मान लीजिए कि सब आपने रट लिया है, सब कुछ जान लिया है, सब कुछ समझ लिया है, लेकिन अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं जाना है या आपने समझे हुए को करंट अफेयर्स से नहीं जोड़ा है तो ये मानकर चलिए कि समझा समझाया सब बेकार चला जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, जो करंट अफेयर्स के पैटर्न को लेकर के जो डेली ऑडियो लेक्चर आता है वह आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण अब जिस कुछ दिनों तक मैं जो इस नए पैटर्न पर बात करूंगा वह है। तो आपको दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलना है, दोनों को कंबाइंड करके चलना होगा। तो मित्रों मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि अब कुछ दिनों तक जब तक कि मेरी क्लासेस चल रही हैं और आपको मालूम है कि 25 मार्च को हमारे क्लास का समापन होगा तब तक अब मैं इसी पैटर्न पर आपसे बातें किया करूंगा। कोई भी एक विषय मैं उठाऊंगा, एक विषय या दो विषय जैसा भी ठीक लगेगा विषय के अनुसार, और उसके बेसिक्स को समझाने की मैं कोशिश करूंगा। बेसिक्स को समझाने का मतलब है कि आप ये जान जाएं कि ये इनफेक्ट है क्या। देखिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं जानते हैं कि ये है क्या, हो सकता है कि आप जान रहे हो, चलिए इसी बहाने रिवीजन हो जाएगा। मैंने अक्सर महसूस किया है, देखिए मेरे एक साल भर के एक महीने का जो वक्त है वो तो बड़े खूबसूरत तरीके से आप ही लोगों के साथ बीतता है। जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं वही स्टूडेंट 15-15 दिन के दो बैचेज में आते हैं और पूरा समय आप लोगों के साथ ही बीतता है और खूब बातचीत होती है। उन बातचीत के दौरान भी मैं अपने आप को अपडेट करता हूं, वो मेरे लिए भी बहुत जबरदस्त किस्म का लर्निंग पीरियड होता है। लर्निंग पीरियड इस मायने में कि मैं उस दौरान ये बड़ी अच्छे तरीके से समझ पाता हूं और बड़ी सच्चाई के साथ समझ पाता हूं कि जो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनकी डिमांड क्या है, उनकी कमजोरियां क्या है, उन्हें किस तरीके से सही रास्ता दिखाया जा सकता है। तो इस रूप में भी मैं लगातार अपने को चेंज करता रहता हूं और फिर जब मैं बेसिक बताने की और समझाने की बात कर रहा हूं तो वो एक ही पैटर्न पर नहीं होता। जब मुझे लगता है कि नहीं देखिए मैं इसको इस तरीके से समझाने के बारे में सोच रहा था लेकिन इसे तो इस तरीके से समझाया जाना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स की ये रिक्वायरमेंट है, तो मैं उस तरीके से उसमें परिवर्तन भी लाता हूं। तो आप ये मान करके चलिए मित्रों कि भले मैं बेसिक्स की ही बात करता हूं या कह लीजिए कि यहां मेरी 15-15 दिन की क्लासेस लगती हैं तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल डुप्लीकेट ही होती हैं या कार्बन कॉपी होती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जरूरत के हिसाब से उसमें लगातार बदलाव आता रहता है। तो मित्रों मैं आपसे कहना यह चाह रहा हूं कि हो सकता है कि मैं जिस टॉपिक पर बात कर रहा हूं उस टॉपिक के बारे में आपकी तैयारी हो, लेकिन देखिए तैयारी होना अलग बात है और उसके बारे में समझदारी होना अलग बात है। तो आप थोड़ा सा ही आपको वक्त लगता है तो आप उसके लिए टाइम निकालें, उसे सुने, समझने की कोशिश करें। आप पाएंगे कि कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन जरूर हो गया है, कुछ ना कुछ आपको ज्यादा जानकारी डेफिनेटली मिल गई है, यह एहसास आपको होगा। तो मित्रों आइए आज थोड़ा सा वक्त मैंने इस क्लेरिफिकेशन में दिया है और मुझे लगता है कि ये जरूरी भी था क्योंकि अदरवाइज आपको थोड़ा सा अटपटा सा लगता आगे के बारे में, आप सही तरीके से अपने आप को प्लान नहीं कर पाते। तो ये सब बताने के बाद अब मैं अपने विषय पर आता हूं और आज हम लोग बात करेंगे गुड गवर्नेंस पर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सुशासन। देखिए जैसे ही मैंने ये विषय कहा कि हम लोग सुशासन पर बात करेंगे, गुड गवर्नेंस पर बात करेंगे, तो मैं समझ सकता हूं कि आपके दिमाग में क्या विचार आया होगा। आपके दिमाग में जो विचार आया होगा वो ये, इसके बारे में तो हम जानते हैं, इसके बारे में तो क्या बात करना, या ये भी आ सकता है कि ये तो बहुत ही सरल टॉपिक है, इसके बारे में तो अगर कुछ भी पूछा जाए तो हम अभी भी बता सकते हैं जबकि हमने सर को सुना नहीं है और सच पूछे तो हमने पढ़ा भी नहीं है, लेकिन हम बता सकते हैं। सुशासन का मतलब है वह शासन जो अच्छा हो, बस खत्म, अच्छे तरीके से शासन करना। अच्छे तरीके से शासन करने का क्या मतलब है? मतलब यही है कि जहां भ्रष्टाचार ना हो, जहां हम जब सरकारी काम के लिए जाएं तो हमारा काम अच्छे से हो जाए, सरकार अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखे, जो भर्तियां होती है नौकरी में तो भर्तियां सही तरीके से होती रहें, यही सुशासन है। लड़ाई झगड़े ना हो, लोगों को न्याय मिल जाए, लोगों को शिक्षा मिल जाए, लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल हो जाए, आपके दिमाग में यही पॉइंट आ रहे होंगे। और सबसे खतरनाक बात जो सिविल सर्विस की और उसके सिलेबस की है दोस्तों, वो ये है कि जब आप सिलेबस उठा करके देखेंगे और थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, उसके पॉइंट्स भी निकालेंगे, तो आपको सिलेबस बहुत कठिन नहीं लगेगा और बहुत उटपटांग भी नहीं लगेगा। वो तो वही है जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं, अगर आपने ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन किया है तो फिर कठिनाई क्या है? मित्रों उस कठिनाई को समझिए। कठिनाई ये है कि इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं जो बड़े सरल से दिखाई देते हैं, इनफैक्ट वो उतने सरल नहीं होते। सरल इस मायने में तो होते हैं कि आप उन्हें समझ सकते हैं, उसमें कोई मैथमेटिक्स वाली जटिलता नहीं होती, लेकिन इतने सरल भी नहीं होते कि आप बिना पढ़े और बिना ठीक ठाक तैयारी के और बिना उनको समझे कलम उठाएं और आप उत्तर लिखने बैठ जाएं। देखिए अभी जो मैंने सुशासन की बात कही, सुशासन के बारे में जो भी पॉइंट्स मैंने अभी दिए हैं वो उसके हिस्से हैं, लेकिन याद रखिए कि ये सुशासन नहीं है। अगर हम सुशासन को डिफाइन करना चाहेंगे, परिभाषित करना चाहेंगे, तो उसकी परिभाषा बिल्कुल अलग होगी। ये तो उसके तत्व हैं, और जो मैंने अभी आपको बात भी बताई है ये तत्व भी सच पूछिए तो सेकेंडरी हैं। अगर हम सेकेंडरी न भी कहें तो आप यूं कह सकते हैं कि ये तत्व बेसिकली आउटकम है। आउटकम का मतलब है परिणाम है। भ्रष्टाचार न हो, लोगों को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य की देखभाल होती रहे, लॉ एंड ऑर्डर बने रहे, ठीक ठाक चलता रहे, ये क्या है आप बताइए? ये क्या है? ये सुशासन नहीं है, सुशासन के परिणाम है। अगर शासन अच्छे तरीके से काम करेगा तब ये सारी चीजें होती रहेंगी। ये सारी चीजें होती रहें इसके लिए जरूरी है कि सुशासन हो, क्योंकि अगर कुशासन होगा तो ये चीजें नहीं होंगी। तो अब प्रश्न देखिए ये आता है कि वो कौन सी चीजें हों ताकि ये सब होता रहे। तो जो चीजें हों वे सुशासन है, राइट? तो अब आपने देखा कि आप सही होते हुए भी, देखिए जब आप जो मेरी बात अभी जो मैंने आपसे कही है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक से होता रहे, हम ऑफिस में जाएं और हमारे काम ठीक ठाक निपट जाएं बिना किसी मुसीबत के, बिना किसी लेन देन के, तो ये सुशासन के कहीं ना कहीं लक्षण हैं। या सामान्य तौर पर हम यही मानते हैं, लेकिन जब आप थोड़ा सा गहराई से जाएंगे, थोड़े एकेडमिक तरीके से सोचेंगे तो लगेगा कि नहीं, ये तो सुशासन के परिणाम है, सुशासन तो कुछ और है। तो मित्रों अब आइए हम थोड़ा सा उसे एकेडमिक तरीके से देखने की कोशिश करते हैं कि इसके बारे में जो हमारे जो शिक्षाविद रहे हैं, जो इस जगत में काम कर रहे हैं, वो क्या सोचते हैं। मित्रों मैंने इस विषय को इसलिए उठाया है क्योंकि आप जानते हैं कि अक्सर सुशासन की बात होती है, यहां तक कि अब जो बात होती है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो शुरू से जो बात कहते आ रहे हैं, लेस मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, राइट? मतलब जो सरकार होगी वो कम से कम होगी, लेकिन जो काम होंगे, गवर्नेंस होंगे, वो ज्यादा से ज्यादा होंगे, राइट? तो गवर्नमेंट जो करती है, जिस तरीके से करती है, वो गवर्नेंस है, राइट? गवर्नमेंट तो एक रूप है, लोगों का समूह है जो कर रही है। अब गवर्नेंस वो है जो हो रहा है, जिस तरीके से किया जा रहा है, राइट? तो मित्रों अगर हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि लेस गवर्नमेंट या मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, तो उसका मतलब भी कहीं ना कहीं सुशासन से ही है। यानी कि जब गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं करेगी कामों में तो वो काम ऑटोमेटिक तरीके से, नेचुरल तरीके से होते चले जाएंगे, उनके कहने का मतलब यही है। लेकिन उसके लिए आपको एक सिस्टम बनाना पड़ता है, एक पॉलिसी एस्टेब्लिश करनी पड़ती है। जब तक आप पॉलिसी नहीं बनाएंगे गवर्नमेंट काम नहीं करेगी। देखिए गवर्नमेंट तो बहुत से लोगों का समूह है, वहां इतने सारे लोग हैं कि आप किन किन को नियंत्रित करेंगे और कैसे नियंत्रित करेंगे? एक एक को तो देख करके आप काम नहीं करा सकते। तो गवर्नमेंट इनफैक्ट फिर कुछ पॉलिसीज बनाती है, काम करने के कुछ तौर तरीके बनाती है, और उसके जो तौर तरीके होते हैं वही बेसिकली इस बात का निर्धारण करते हैं कि ये जो गवर्नमेंट होगी और गवर्नमेंट जो कुछ भी करेगी वो गुड गवर्नेंस होगा या नहीं होगा। जैसे उदाहरण के जरिए मैं आपको समझाऊं कि मान लीजिए कि कहीं तानाशाही शासन है, राइट? और उसमें सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, लोगों की देखभाल हो रही है, लोगों को भोजन दिया जा रहा है, पढ़ाई लिखाई हो रही है, हेल्थ भी मिल रही है, ऑफिसेज में भी काम हो रहे हैं, क्योंकि तानाशाही है तो लोग भ्रष्टाचार से डर भी रहे हैं। जैसे मान लीजिए 1975 की आप इमरजेंसी को ले लीजिए, एक केस स्टडी के रूप में आप इसे ले सकते हैं। 1975 में जब प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने हमारे देश में आपातकाल लगाया था तो सच पूछे तो गवर्नेंस के मामले में वो समय काफी ठीक ठाक था। आप उस समय के लोगों को पूछिए और मुझे तो उस समय की बहुत अच्छे तरीके से स्मृति है। ऑफिसेस टाइम पर खुलने लगे थे, करप्शन कम हो गया था, रेलगाड़ियां सही समय पर चलने लगी थी, लोग टैक्स चोरी वगैरह से घबराने लगे थे, ये सारी चीजें होने लगी थी। तो ये गुड गवर्नेंस तो है, अच्छे से सब काम हो रहा है, लेकिन क्या हम इसे गुड गवर्नेंस कह पाएंगे? क्या ये गुड गवर्नेंस होगा? मित्रों, ये गुड गवर्नेंस नहीं होगा। देखिए, सरकारी काम ठीक ठाक होने के बावजूद यह गुड गवर्नेंस नहीं होगा। अब आपका दिमाग थोड़ा सा चटका होगा, थोड़ा सा घूमा होगा कि अगर यार ये गुड गवर्नेंस नहीं है तो फिर गुड गवर्नेंस है क्या? तो अब आप देखिए कि इसमें किसने गुड गवर्नेंस को खत्म किया है, कमजोर किया है, वो कौन सी चीज है? नीचे सारी चीजें ठीक ठाक हो रही हैं, जो चीजें जिन्हें हम गुड गवर्नेंस मान रहे हैं उस लेवल पर तो चीजें ठीक ठाक हो रही हैं, लेकिन गड़बड़ी कहां हो गई? फिर हम इसे कह क्यों नहीं रहे गुड गवर्नेंस? क्या आप ऐसे गवर्नेंस में रहना चाहेंगे? आप बताइए। चलिए मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि क्या आप इमरजेंसी में रहना चाहेंगे, आपातकालीन व्यवस्था में आप रहना चाहेंगे? और इसलिए कि क्योंकि आपातकालीन व्यवस्था में सब चीजें ठीक ठाक होती हैं, जो शक्ति है, अथॉरिटी होती है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, वो सारी चीजों के बारे में निर्णय ले सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। डंडे का शासन कह लीजिए, क्या डंडे के शासन में आप रहना चाहेंगे जिसमें बिल्कुल अनुशासन रहता है, सब लोग डरते हैं, काम ठीक ठाक हो जाते हैं, लोग घूस लेने में घबराते हैं, भ्रष्टाचार लगभग लगभग खत्म के बराबर हो जाता है, जो व्यापारी होते हैं वो भी टैक्स वैक्स की चोरी नहीं करते, तो सरकार को रेवेन्यू भी काफी कुछ मिल जाता है और उस रेवेन्यू का इस्तेमाल फिर सरकार हमारे लिए ही करती है, क्या आप ऐसी व्यवस्था में रहना चाहेंगे? अगर आप कहते हैं कि नहीं सर, ऐसी व्यवस्था में हम रहना नहीं चाहेंगे, तो इसका मतलब है कि ये गुड गवर्नेंस नहीं है, सीधी सी बात है। तो मित्रों, यहां हमें सोचना होगा कि फिर गुड गवर्नेंस फिर है क्या? अगर ये नहीं है तो फिर वह है क्या? तो मित्रों, आज तो अब टाइम हो गया है और अभी मुझे इसे समझाने और बताने के लिए थोड़ा सा लंबा ही वक्त लगेगा, तो इस पर अब आप सब मुझे इजाजत दीजिए कि कल मैं इस पर विस्तार से बात करूं, इस अच्छा खुलासा करूं। ये विषय आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि न केवल इसका गवर्नेंस से ही संबंधित है, गवर्नमेंट से भी संबंधित है, कहीं न कहीं पॉलिटिकल साइंस से भी, आपका कॉन्स्टिट्यूशन से भी संबंधित है, एसे राइटिंग से भी संबंधित है, प्रशासन से भी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी इसका संबंधित है, सिविल सर्विसेज से भी यह संबंधित है। तो ढेर सारे टॉपिक से चूंकि इसका संबंध है, तो मैं चाहता हूं कि अब चूंकि समय मिला है तो इसका अच्छे से खुलासा इस विषय पर किया जाए। तो मित्रों, आज के डेली ऑडियो लेक्चर में बस इतना ही। अब आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।